ओम शांति। ज्ञान सागर। सर्वशक्तिवान शिव बाबा के हम लाडले बच्चे हैं। क्या हम सब ये महसूस करते हैं कि हम उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के अनन्य रत्न हैं? साकार में जब बाबा थे तो बाबा हमेशा कहते थे अनन्य रत्नों को बहुत बहुत याद प्यार। जैसे आप अपने पास कई चीजें रखते हैं लेकिन उसमें से कोई एक आपको बहुत प्रिय है, किसी को पहनने का शौक होगा तो उसका कोई एक दो ड्रेस ऐसी होंगी जो कहेगा ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे 20 साल पुरानी हो जाए संभाल संभाल के पहनते हैं फट ना जाए। किसी की कोई गाड़ी बहुत अच्छी होगी, किसी का पेन अच्छा होगा, कोई भी एक चीज दो चीज व्यक्तिगत रूप में जो पसंद होती है उसको हम संभाल के रखते हैं। सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे आप अनन्य रत्न हो। भगवान तो हमें इतनी ऊंची निगाह से देखते हैं, इतना ऊंचा स्वमान देते हैं, हम स्वयं को स्वयं देखें मैं किस स्वमान में रहती हूं। दिन भर की कारोबार में मान लीजिए कोई हमें कहता है ये तो बुद्धू है ये तो पागल है, वो हमें फील होता है कहता ये मुझे क्या समझता है। किसी ने आपको पिछले साल कुछ कहा होगा ना, कोई ऐसा शब्द कह दिया होगा, वो आपको पिंच करता है। जब आप उसको देखते हैं व्यक्ति को कहते इसने मुझे ऐसा कहा था ना मैं भूल नहीं सकता। भगवान हमें क्या कह रहा है तो संगम युग का वर्तमान समय जो चल रहा है हम बाबा के बच्चों ने सचमुच इस समय को पहचाना है। 1936 में भगवान इस धरा पर कार्य करने के लिए आए। नई सत्युगी दुनिया की नींव रखी। कोई सोच भी नहीं सकता था, आज भी आप किसी को कहें ना कि हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए, और सत्युगी दुनिया में जाकर हम देवता बनेंगे तो लोग हंस देंगे या कहेंगे शायद थोड़ा कहीं फर्क आ गया। लोग मानेंगे नहीं कि हम देवता बनने वाले हैं। बाबा हमें क्या दे रहा है? बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हें खजानों का मालिक बनाता हूं। कौन से खजाने बाबा हमें देता है? ज्ञान, गुण और शक्तियां। कहने में तीन शब्द हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां। ये खजाना बाबा ने हमें दिया है, लेकिन एक एक की गहराई में जाएं, जैसे आज भी बाबा ने सवेरे कहा ना, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मुझ आत्मा का कौन सा पार्ट है? मैं अपने पार्ट को देखूं, क्या ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए? संगम युग की घड़ियों में हम वरदाता के घर में आए हैं, वरदान भूमि पर आए हैं। क्या मैं कदम कदम पर वरदान ले रही हूँ, वरदानों की अनुभूति कर रही हूँ, या मैं अपनी ही मौज में, अपनी ही लहर में, इससे मिले, उससे मिले, ये बात की, वो बात की और चल दिए? सोचें, विचार करें, क्योंकि अब ये संगम युग भी बदलने वाला है, सत्युगी दुनिया आने वाली है। साकार में हमने बाबा को देखा, बाबा तो यूं कहते थे, कई बार आप साकार मुरलियों में भी सुनेंगे, बाबा कहते थे, बच्चे मैं कल जाकर ये मिचनू मिचनू बनने वाला हूं। आज भी आप अगर मधुबन में छोटे हॉल में जाएं, तो एक तरफ जिधर बहनें बैठती हैं, दूसरी तरफ भाई जिधर बैठते हैं, फर्स्ट गेट पर वो एक लक्ष्मी नारायण का चित्र, उसके ऊपर श्री कृष्ण का छोटा सा चित्र है। बाबा कई बार मुरली चलाते, बच्चे मैं कल जाकर ये मिचनू मिचनू बनने वाला। साकार बाबा से स्पष्ट ये साक्षात्कार, ये अनुभव बच्चों को होता था, बाबा ये बनने वाला है। बाबा को ऐसे फीलिंग आती थी जैसे हम कोई अपनी ड्रेस चेंज करते हैं ना। आपको मान लीजिए अभी कहीं जाना है, आप सोचते हैं बस मैं दो मिनट में कपड़े चेंज करके आऊं, तो बाबा को ऐसे लगता था जैसे बाबा ये ड्रेस चेंज करके बस ये ड्रेस पहनने वाले हैं। तो ज्ञान सागर शिव बाबा हमें वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। क्या हमें ये स्पष्ट अनुभूति, स्पष्ट नशा चढ़ता है कि हम भी कल जाकर देवता बनने वाले? क्या विचार है सब भाइयों का? नशा चढ़ता है भाई, ये नशा चढ़ता है, हम ये देवता बनने वाले हैं। बहनें, माताएं, नशा चढ़ता है? हाथ उठाने की बात नहीं है, लेकिन सचमुच अपने दिल से हम पूछें, क्योंकि इसके आगे भी बात है। अगर मुझे ये नशा आ जाए, ये खुशी आ जाए, मैं देवता बनने वाली हूं। आप देखिए, किसी छोटे से बच्चे को आप श्री कृष्ण बना देते हैं, राम बना देते हैं, राधा बना देते हैं, सीता बना देते हैं, केवल उसके बाहर के कॉस्ट्यूम ही तो चेंज होते हैं ना। श्री कृष्ण बनाया आपने, पीले से कपड़े पहना दिए, हाथ में बांसुरी दे दी, मुकुट लगा दिया, वो बच्चा वैसे ही चलने लग जाता है जैसे सचमुच कोई श्री कृष्ण जा रहा है। उसकी चाल, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। अब हम स्वयं से पूछें, अगर मैं भी देवता बनने वाली आत्मा हूं, देवी बनूंगी या देवता बनूंगी, मगर देवता बनूंगी, तो क्या मेरे हाव भाव बदले? ये हम अपने से बात करें। मधुबन में आए हैं तो हमें मधुबन में क्या करना है? केवल ऐसा नहीं कि क्लास का प्रोग्राम अनाउंस हुआ, आज फलाना क्लास कराएगा फलाना कराएगा, बस हमने भी सुन ली और चले गए। सुना, खुश हो गए, इस भाई ने बहन ने बहुत अच्छी क्लास कराई। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को चांस दिया है, हम अपने आप को चेक करें और चेक करके हमारी जो भी कोई थोड़ी बहुत कमजोरी है उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, खत्म करेंगे। एकदम हमारा परिवर्तन। क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने ही हैं किस लिए, विश्व परिवर्तन के लिए। बाबा आया ही है विश्व परिवर्तन करने। तो हमारी नजर, मेरी नजर मुझ पर जाए, क्या मेरा परिवर्तन हो रहा है? जब अपने परिवर्तन की बात आती है तो हम आसानी से कह देते हैं, एक के बदलने से क्या होगा। ब्रह्मा बाबा एक, मम्मा एक, आप पूरा चार युगों का इतिहास देख लीजिए, जो भी कोई हुआ चाहे वो लौकिक में चाहे अलौकिक में, वो एक ही हुआ। मीरा एक, नारद एक बन गया ना उनका इतिहास, लक्ष्मी नारायण एक, सीताराम एक, महात्मा गांधी एक, और उन्होंने समाज में देश में कोई ना कोई बहुत बड़ी क्रांति लाई, परिवर्तन लाया। और हम तो बाबा के इतने बच्चे हैं, हम सोचते हैं केवल मेरे बदलने से क्या होगा। मेरे बदलने से ही सतयुग आएगा, क्या मुझे ये निश्चय है? हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे अंदर ये निश्चय की नींव पक्की होनी चाहिए। सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर शिव बाबा नई सत्युगी दुनिया की स्थापना करने आए हैं और मैं आत्मा उसमें निमित्त। कई बार हम कहते हैं, जब हम पूछते हैं, बाबा की एक मुरली भी थी, पूछते हैं आप बाबा के घर में आते हैं आपको क्या अनुभव हुआ, अधिकतर भाई बहने क्या अनुभव सुनाते हैं, आप योग में बैठे आपको क्या अनुभव हुआ, कहते हैं बहन जी बहुत शांति मिलती है। चलो कोई की कोई समस्या होती है तो कहता है मुझे आज ऐसा लगा जैसे बाबा ने कहा बच्चे हो जाएगा। किसी को लगता है बाबा मेरा सहारा है। वास्तव में हम बाबा के बच्चों को योग में अनुभव होना क्या चाहिए, शांति का अनुभव। तो आप तो यहां बैठे हैं डायमंड हॉल में, यहां तो शांति का ही अनुभव होगा। आप कुछ भी ना करें, आराम से बैठ जाएं, आप बताइए यहां कोई अशांति की बात है, है? आपको यहां कोई चिंता है? आपको ये भी चिंता नहीं है कि अभी क्लास से उठ के जाएंगे तो हमें खाने को क्या मिलेगा? घर में तो आप सोचते हैं, घर में दो लोग होते हैं, चार लोग होते हैं, दो मेहमान आ जाते हैं, भाई आज इनको क्या खाना खिलाएं, आपको तो ये भी चिंता नहीं है। आपको ये भी चिंता नहीं है कि कल सवेरे चाय बनाएंगे तो एक किलो दो किलो दूध लाना है, वो भी चिंता नहीं है। है किसी को चिंता तो हाथ उठाए। चिंता है, तो यहां तो शांति का अनुभव होना स्वाभाविक बात है। वास्तव में अनुभव क्या होना चाहिए? हम बाबा की याद में बैठे, बाबा की याद में हमें सुख का अनुभव हुआ, बाबा ने हमें वरदान दिया है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पहले सुख फिर शांति, और हम क्या कहते हैं, शांति का अनुभव हुआ। सुख, तो ये सुख का अनुभव हम बाबा के बच्चों को तब होगा जब अंदर से निश्चय पक्का हो और मेरे सर्व संबंध एक बाबा से जुड़े हुए हों, अंदर में ये खुशी हो कि बाबा ही मेरा बाबा है, सत्य मात पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु है, खुदा दोस्त है। जब सर्व संबंध एक बाबा से जुड़े तो हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। लौकिक रीति में भी आप देख लीजिए, कहीं पहाड़ों में घूमने चले जाएं, समुद्र के किनारे घूमने चले जाएं, विदेश में चले, वहां बहुत शांति थी, समुद्र के किनारे बहुत शांति थी, पहाड़ों पर बहुत शांति थी। ये शांति का अनुभव तो आप प्रकृति की गोद में भी करते हैं, लेकिन बाबा हमें कौन सा अनुभव कराते हैं और कराना चाहते हैं? बाबा हमें केवल शांति का अनुभव नहीं कराते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य हमें क्यों अच्छा लगता है, बहुत साफ है, स्वच्छता है, तो पहली मेरी पवित्रता की नींव पक्की हो, दूसरा मुझे सुख की अनुभूति हो। मुझ जैसा भाग्यवान कौन जिसको स्वयं भगवान मिले हैं, भगवान पढ़ाते हैं, वो मेरा बाबा है, और वो मेरा बाबा कौन है, वो मेरा शिव बाबा ही, मेरा सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है, विश्व परिवर्तक है, मनुष्य से देवता बनाने वाला है। वाह, मुझ जैसा भाग्यवान कौन? तब अपने अंदर खुशी की लहर, जो बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे, बाबा बच्चों को सदा खुश देखना चाहते हैं। लौकिक रूप में मान लो आपके आगे कोई छोटी मोटी समस्या आ भी जाती है, और मान लीजिए कोई ऑफिसर, कोई नेता आपको जानता है, केवल जानता है, संबंध नहीं है, तो भी आप बड़े निश्चिंत रहते हैं। आप कहते हैं कोई बात नहीं, ये बात आई है, वो फलाना मुझे जानता है, मैं उससे काम करवा लूंगा, और किसी का अगर संबंध ही हो, मामा, चाचा, काका, दोस्त ही कोई ऑफिसर हो, नेता हो, तो उसकी तो बात ही क्या, वो कहता मुझे तो कोई चिंता नहीं है भाई, मेरा तो फलाना है, मेरा काम तो हो जाएगा। क्या मेरे अंदर ये भावना, ये फीलिंग, ये निश्चय पैदा होता है, मेरा बाबा कौन है? वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरा बाबा है, मेरा सत्य पिता है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है, मुझे किसकी चिंता है? हम बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। बाबा कहता बच्चे मैं तुम्हें खजानों का मालिक बनाता हूँ। हम कहते भी हैं हम बाबा के दिए हुए खजानों के मालिक हैं। जितना ज्ञान हमारे पास है दुनिया में किसी के पास नहीं है। और फिर पूछें भाई जी बहन जी आप कैसे हैं, तो अंदर ही अंदर कहेंगे बहन जी क्या करें, आजकल तो थोड़ा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा फलाना बीमार है, वो फलाना मेरा बेटा बेटी ठीक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पता नहीं कितनी समस्याएं सुनाते हैं। हैं समस्याएं या नहीं है, क्या विचार है आप सबका? भाई बहने आप बाबा के तो बने हैं, फिर समस्याएं हैं व्यक्तिगत रूप में या नहीं है? अभी तो ज्ञान की बातें सुन रहे हैं तो कहेंगे नहीं है, और अभी यहां से उठ के बाहर जाएंगे तो एक दो से यही बातें करेंगे, कहेंगे बहन जी बात तो ठीक कह रही थी पर क्या करें भाई। फिर उसमें एक्सक्यूज कौन सा देते हैं, कहते हम तो दुनियादारी में रहते हैं ना, दुनियादारी माना समस्याएं और बाबादारी माना समस्याओं से परे। ऐसा सोचते हैं हम तो गृहस्थी हैं, हम तो दुनियादारी में हैं, जैसे उनको तो एक लाइसेंस मिला हुआ है, कोई बात नहीं आपके पास समस्याएं हैं, आप रो रहे हैं, आप उदास हैं, कोई बात नहीं। तो अपने चिंतन को, अपने अंदर की भावना को, अपनी स्मृति को हम बाबा के बच्चों को इतना ऊंचा उठाना है। हम बाबा के बच्चे हैं और सचमुच सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं मेरे रक्षक हैं। कितनी अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा है बच्चे हजारों भुजाओं वाला बाबा तुम्हारे साथ है। कितनी मुरलियों में भगवान खुद कह रहा है बच्चे अपना सारा बोझा मुझे दे दो, लेकिन हम बाबा के बच्चे फिर भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपना बोझा हम खुद ही उठा के क्या करें कैसे करें। बोझा दे देना माना उस बात को भूल जाना, मैंने बोझा दे दिया। मान लीजिए मैंने अपना पर्स आपको दे दिया कि भाई मैं क्लास कराने जाती हूँ आप संभाल के रखना, तो फिर उसकी चिंता किसको होगी, आपको या मुझे? आप कहेंगे स्वाभाविक है बहन जी हम संभाल के रखेंगे। मैं क्लास के बाद आके पूछूंगी कि भाई मेरा पर्स कहाँ है, आप कहेंगे लो भाई हमने आपका संभाल के रखा, अब आपकी अमानत हमने आपको दे दी आप ले लो। लेकिन इतनी देर तो मैं निश्चिंत हूं ना कि मैंने किसी को दिया हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा बोझा कौन मांग रहा है, स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा जो मुझ आत्मा के पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, वो बाबा कह रहे हैं बच्चे अपना सारा बोझा मुझे दे दो। क्या मुझे देना आता है, देने की विधि है, जब अंदर से मैं ये समझूं मैं खुद बाबा की हूं, मेरा अगर है तो केवल बाबा है और कोई भी मेरा नहीं है। मैं बाबा की हूं माना ये नहीं कि आप यहां बैठ जाएंगे, भक्ति में भी वो कितनी कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने भगवान में निश्चय रखा तो भगवान ने क्या किया, उनकी भावना को पूरा किया। बहुत सी कहानियां आपको याद होंगी, वो मेहता की कहानी है, बहुत गरीब था, उसने कहा भगवान आपको ही जो है ये भात भरना है। भगवान चले गए उसका काम करने, शादी भी उसके बच्चे की करा के आ गए। ये प्रसंग बने हुए हैं। मीरा ने क्या किया, मीरा को जहर दिया और वो जहर क्या हो गया, ये तो सबको पता है ना, राजस्थान में तो विशेष, हाँ मीरा का मंदिर भी है ना। विचार कीजिए, जो भक्त है उसका भी मंदिर बन गया क्योंकि उसने अपना बोझा भगवान को दे दिया। अमृत जहर क्या हो गया, अमृत बन गया। आप विचार कीजिए, आप मधुबन में रहेंगे कम से कम भी आप 7 दिन जो आज आ गए हैं, वो कम से कम भी 7 दिन मधुबन में रहेंगे। आप ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे, वो चाहे सवेरे खाएं, चाहे दोपहर खाएं, चाहे रात को खाएं। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए कहते हैं देवताएं भी तरसते हैं। कोई एक छोटी सी बात को हम जरा अपना बना के चल के तो देखें कि ये ब्रह्मा भोजन खाने से मेरे सब कलह क्लेश मिट जाएंगे, लेकिन हम तो उसको भी क्या बना देते हैं, अमृत को, हमारे में इतनी शक्ति है हम अमृत को भी क्या बना देते हैं। कई बार देखा है कई भाई बहन तो बीमार ही हो जाते हैं, कहते पेट खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वास्तव में बाबा के घर में आकर तो ये समस्या आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तब मिटेगी जब मैंने ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया तो मैंने किस रूप में किया। अब मान लीजिए मैं भोजन थाली में लेके आ गई और मेरे साथ जो मेरे 2-4 साथी मित्र दोस्त सखी सहेली बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं और खा रहे हैं, अब ये ब्रह्मा भोजन क्या बन जाएगा? रहा ब्रह्मा भोजन, मिला तो ब्रह्मा भोजन था, लेकिन मैंने उस ब्रह्मा भोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आगे जब हम मधुबन में आते थे, हमें याद है भूरी दादी होती थी, खाना खिलाती थी, जमुना दादी थी, एक बार थाली में लेके आते थे, आराम से बैठ के खाया, बस दोबारा उठकर जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। और बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं, बच्चे जो अच्छे अच्छे सन्यासी महात्मा होते हैं एक बार थाली में लेते हैं और खा लेते हैं। माना इतना अंदर में संतोष है, संतुष्टता है, लेकिन हम जब भोजन करते हैं कौन सी वृत्ति में करते हैं? आकर्षण में, लोभ में, हबश में, कौन सी वृत्ति से कर रहे हैं? आप कहेंगे हमने तो मम्मा बाबा देखे नहीं। हम दादियों को अभी भी कई बार, दादी जानकी हमारे पास आए थे, हमने देखा कितना प्यार से दादी जानकी था, बस कहीं नहीं देखेगी, इधर उधर कहीं नहीं, ऐसे भोजन खा रहे हैं तो एकदम ये भाव में प्रभु प्रसाद स्वीकार कर रही हूं। जब हम ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं, क्या हमारे मन में ये भाव रहता है? कितनों के मन में ये भाव रहता है, हम प्रभु प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं? चलो घरों में तो हो सकता है, किसी के घर में कोई ज्ञान में चलता है, कोई नहीं चलता है, कोई बाबा को भोग लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं। अपनी थाली में आने के बाद भी कभी तो बाबा याद रहता है, कभी भूल ही जाता है। कम से कम हम जब मधुबन में आए हैं, हर भाई बहन ये प्रयोग करके देखे, आज से ही रात्रि भोजन करेंगे ना सब। एक बार थाली में शांति से लिया, बाबा को याद किया, ये प्रभु प्रसाद, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जिसको प्रभु प्रसाद मिला है। खाएंगे इस वृत्ति से? कौन कौन खाएंगे इस वृत्ति से? मेरी बात को समझ लिया ना? हाँ, क्योंकि ये तो बड़ा हॉल है, दूर दूर बैठे हैं। याद रहेगा या भूल जाएंगे? चाहे रात्रि भोजन करें, चाहे दिन में करें, चाहे नाश्ता करें, चाहे चाय पिए, बाबा ने मेरे लिए अमृत भेजा है, मेरे लिए प्रभु प्रसाद भेजा है। ऐसा साइलेंस में रहकर, क्योंकि जब हम कहते हैं मौन में रहो तो लगता है ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है भाई, कभी तो बोलना भी पड़ता है। चलो इतना सा नियम बना लें, हम भोजन खाएंगे शिव बाबा को अपना साथी बना के खाएंगे, इस भाव से खाएंगे मुझे बाबा ने ये प्रभु प्रसाद दिया है। आप खा के देखिए, वो ब्रह्मा भोजन खाने के बाद हमारे अंदर कितनी शांति, कितनी स्वच्छता, कितना मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं। क्योंकि योग केवल इस चीज का नाम नहीं है कि हम आए और बैठ गए, अच्छा मैं अब शुद्ध आत्मा हूं। बाबा ने कई बार हमें याद दिलाया है, बच्चे आप योगी जीवन वाले हैं। तो योगी जीवन माना है, फिर हम सोचते हैं अरे योगी जीवन, बहन जी जब काम धंधा करते हैं तब तो हमें बाबा याद ही नहीं रहता है। अपने अपने शहर में जब सड़क पर जाएंगे, इतनी भीड़ होती है, गाड़ियां, साइकिल, स्कूटर, पों, खुद भी टेंशन में होते हैं, जल्दी जाना है जल्दी जाना है, बाबा तो याद नहीं रहता है। लेकिन हर कर्म करने से पहले तो मैं बाबा को याद करूं। तो अब जितने दिन हम मधुबन में रहेंगे, हर भाई बहन अपने अंदर ये संकल्प ले, चाहे मैं पानी ही क्यों ना पीऊं, लेकिन इस तरह से बाबा ने मुझे अमृत दिया है। हमें याद है हम लोग जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए थे, उस समय तो ओम शांति कहने का भी प्रचलन नहीं था। करते थे कोई ओम शांति? आप कहेंगे तब क्या करते थे? ये तो जब संगठन बढ़ा और सब कहने लगे बाबा से, बाबा मिलते हैं, क्योंकि कोई उस समय राम राम कहते थे, कोई कुछ कहते थे, बाबा क्या कहना चाहिए। बहुत बाद में शुरू हुआ ओम शांति कहना। तो पहले जब मिलते थे तो कैसे मिलते थे, सेंटर्स पर भी आते थे ना, हमारी बड़ी बहने होती थी, मनोहर दादी होती थी, ये सब दादियां, तो जाते थे बस ऐसे खड़े हो जाते थे, दृष्टि का आदान प्रदान। भाई बहने भी आपस में मिलते थे तो एक दो को ऐसे दृष्टि देते थे, आत्मा का अभ्यास इतना पक्का करते थे। और हम लोग जब ज्ञान में आए, हम तो बहुत छोटे छोटे थे, पानी भी लेते थे, लोग हंसते थे, कहते थे आपने बच्चों को क्या सिखा दिया, माँ बाप को कहते थे। मालूम नहीं, मैं अभी कभी कभी याद करती हूँ, योग हमें आता था या नहीं, 6-7 साल के बच्चे को क्या योग आता होगा। लेकिन हमें याद है कि पानी का गिलास लेके भी ना ऐसे 2 मिनट खड़े हो जाते थे। ये था कि कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, बाबा को याद करना है। बच्चे बड़े सब पानी भी पियेंगे ऐसा? आजकल तो हम भागे भागे जाते हैं, पानी का गिलास लिया, यूं किया और चल मेरे भाई। फिर हम पूछते हैं, अच्छा आपको नशा है, याद है हम देवता बनेंगे, तो कहते हाँ है। तो जो बाबा कहते हैं बच्चे आपका चाल चलन, चाल चलन तो हमारा अच्छा ही है ना। हम बाबा के बच्चे हैं, पवित्र रहते हैं, शुद्ध खान पीन खाते हैं, हमारे चाल चलन में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन बाबा ये देखना चाहते हैं हमारे से ये देवतापन, फरिश्तापन की झलक फलक आए। ऐसे नहीं भागे भागे गए, अरे प्यास लग रही जरा लिया और यूं पानी पिया और चल दिया। अरे ये कैसे, खाना खाया, थाली वहां फेंकी और बस पानी ऐसे पिया और चल दिए। लेकिन एक एक घुट में बाबा की याद में रहकर पीकर तो देखूं। तो आज से आप सब भाई बहने अवश्य ये प्रयोग यहां 6-7 दिन करके जाएं।